आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 77। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, लक्ष्मीनिवासनिलयं, विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम्। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है। उस पर क्षुल्लक मनोहरजी वर्णी जो सहजानंद जी, उनके प्रवचन हुए हैं। और इस आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक दूसरी, उसमें हम पृष्ठ संख्या 69 पर आ गए। 69 यहाँ हमने श्लोक भी पढ़ा था 100 नंबर का, और पंडित टोडरमल जी के पुस्तक में से अर्थ और भावार्थ दोनों देख लिए थे। अब यहाँ हम प्रवचन पढ़ेंगे। स्वयं के द्वारा स्वयं के घात की साधना। आत्मा की साधना नहीं कह रहे, किसकी साधना हो रही है? अपने घात के। इस अज्ञानी जीव ने अनादिकाल से जो कुछ भी किया, क्योंकि हम अस्तित्व में कब से है तो अनादिकाल से है, तो क्या किया आज तक? तो कहते हैं कि जो कुछ भी किया वह अपने घात के लिए किया। आज की बात नहीं, अनादिकाल की बात है, क्योंकि अस्तित्व में है अनादिकाल से और अनादिकाल से जन्म मरण कर रहे हैं। तो आज तक इसने अपने घात के लिए जो कुछ किया, जैसे कोई कसाई किसी बकरी को घात करने के लिए लिए जा रहा हो, बड़ी धूप हो, गर्मी में व्याकुलता आ गई, गर्मी को मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे छाया में वह बकरी को लेकर ठहर गया। वहां उस बकरी ने अपने खुरों से जमीन को बहुत खरोचा, उस खरोचने से एक छुरी जमीन में से निकल आई। तो कसाई कहते ना ये जानवरों को मारने वाले, वो कसाई। तो कहते कसाई ने अचानक अवसर पाकर उसी छुरी से उस बकरी का घात कर दिया, उसके खून से अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो जैसे बकरी ने अपने आप अपने ही खुरों से ऐसी चीज प्रकट कर दी कि स्वयं का घात कर लिया, ऐसे ही यह संसारी प्राणी जिस कार्य को करके आत्मा का घात होता है, उस कार्य को अपने आप ही कर डालता है। मैंने अनादि से इतना ही कर दिया, उसने अपना ही घात करते आया है। जो जो किच किया, उद्यम किए, अपने घात के लिए हो गए। विकार से विकास का घात, यानी हमारा विकास नहीं हो पाता विकार के कारण। इस जीव का जो अनंत विकास है, वह विकास विषय कषायों के परिणाम से तिरोहित हो गया, ढक गया है कहते। यानी किसी कर्मों का दोष नहीं लगाया, विषय कषाय, यानी इसको भावघाती भी कहते हैं। स्वामी जी बहुत बार कहते हैं ये घाती कर्म तो ठीक है, परंतु ये भावघाती, यानी उसके अपने स्वयं के परिणाम वो घात कर रहे उसके। क्या लिखा है देखो, जीव का जो अनंत विकास है, जीव में ऐसी शक्ति पड़ी है कि अपना अमर्यादित विकास कर ले, असंकुचित विकासत्व शक्ति। सभी गुणों का विकास कितना हो जाए तो कहते अनंत अनंत अमर्यादित, परंतु वो क्यों नहीं हो रहा फिर शक्ति है? तो कहते विषय कषायों के परिणाम से वो तिरोहित हो गया। एक आत्मा में भी विकास और विषय कषाय दोनों का विरोध है। विषय कषायों के परिणामों के कारण इस जीव के ज्ञान दर्शन शक्ति और सुख आदि का विकास रुक गया है। क्या है यह, क्या उपादेय है, इसका इस अज्ञानी जीव को विचार ही नहीं है। निमित्त तो कर्मोदय है, पर यह अपने आप की स्वच्छंदता से, क्योंकि कर्मोदय तो सबको था, जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपना स्वरूप पहचान लिया, आत्मा का अनुभव किया, मोक्ष प्राप्त किया, तो क्या उनके पास कर्म नहीं थे क्या? तो कर्मोदय ने उनको नहीं रोका है। तो कहते निमित्त तो कर्मोदय है, पर यह अपने आप की स्वच्छंदता से जिसमें इसने अपना मौज माना उस कार्य को वह शीघ्र कर डालता है। दुख ही दुख का काम किया इस जीव ने, फिर भी जो कुछ थोड़ा सा वैषयिक सुख मिला है उसका कोई पक्ष आ जाए तो यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। इसी तरह दुख दुख के कार्य करता हुआ अज्ञानी संसारी प्राणी थोड़े से विषय सुख पा गया तो क्या हुआ? मिलने की कोई विधि तो न थी, पर अचानक सुख समागम हो गया। यानी वो भी वैषयिक सुख की बात है, सच्चे सुख की तो बात ही नहीं है। जैसे हजारों अंधे कहीं पर थे तो उनमें से किसी अंधे के हाथ में बटेर आ गई। ये बटेर नाम का पक्षी है ना? हाँ बटेर, कल बात आई थी बटेर की। उससे हजारों गुना बाकी सारे अंधे तो बटेर नहीं पाते हैं। ऐसे ही निरख लो कि हम आप जिनको जो कुछ थोड़ा बहुत सांसारिक सुख मिला हुआ है, संसार के समस्त जीवों से हम लोग कितने हैं? यानी अनंत जीव है संसार में, तो हम कितने हैं गिने चुने? क्या संख्या है? अनंत तो निगोदिया के जीव बेहोश पड़े हुए हैं और अनगिनते यानी असंख्यात पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति जीव पड़े हुए हैं। मनुष्यों की क्या संख्या है? संगी पंचेंद्रिय जीवों की कितनी सी संख्या है? यानी संगी पंचेंद्रिय सारे तिरंचनार के देव और मनुष्य मिलकर भी सभी असंख्यात है, परंतु जो हम मनुष्यों में देखते हैं, हम पर्याप्त मनुष्य कितने तो संख्यात है, और यहाँ भरत भूमि में कितने होंगे जो हमें आसपास मालूम है वो तो पर कोई पक्षी का नाम है किसका ऐसा? ये कुछ सांसारिक सुख सहज किसी को मिलता है, परंतु उसका तो कोई ये नहीं, बहुत सारे तो अन्य दुख में ही पड़े हुए हैं, ये कहना चाहते हैं। यहाँ लिखा ना हजारों गुना बाकी सारे अंधे तो बटेर नहीं पाते हैं। ऐसे यहाँ किसी जीवों को थोड़ा बहुत सांसारिक सुख मिला तो समस्त संसारी जीवों को तो नहीं, वो तो सारे तो दुख में ही, और ये भी जिसको मिला है वो भी कितने काल तक वो टिकेगा? वो भी उन्हें पर्याय में जाने वाला है फिर, यदि अपना स्वरूप नहीं पहचानेगा तो। नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रही थी, मनुष्यों की क्या संख्या है? संगी पंचेंद्रिय जीवों की कितनी सी संख्या है? समस्त अज्ञानी प्राणियों के यदि अनंत विभाग प्रमाण है, नेचुरली है ना, यानी जो कोई असंख्यात संख्या वाली है वो भी सारे के अनंत विभाग ही तो है, पूरे जीवों के, संसारी जीवों का अनंत विभाग है वो, असंख्यात ये संख्या संसारी जीवों का अनंत विभाग है। इसी प्रकार इन सब अंध जीवों में और मनुष्यों के हाथ में बटेर पक्षी आ गया, पक्षी आ गए ना, तो अत्यंत आश्चर्य की और अनोखी बात है। यानी यहाँ कुछ लाभ नहीं, किसी को ऐसा होता है तो उसमें क्या मिला? सबको तो नहीं मिल रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है वो, यानी अंधे ने बिना किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, ऐसे ही उसके हाथ में आ गए, ये कहना चाहते। पहले भी बात आई थी, देखो कल परसों, उसमें आई थी मेरे ख्याल से, टोरमल जी के उसमें आई थी। क्या 100 पेज नंबर 100 बगुला जी। देखो यहाँ उन्होंने अंधवर्तकीय कहा है श्लोक में, अंधवर्तकीय ना है। तदार्यम विंध्यन तर्यानर विधि विद्ध विधि अंधक वर्तकीयम, यानी यहाँ तो ऐसा बताया है, मैं अर्थ में से कल पढ़ती हूँ जो टोडरमल जी ने लिखा है। इस संसार विषय जो किचु सुखरूप विषय आदि का सेवन पाइये है, यानी तुझे ऐसा लगता है कि तुझे वो सारे विषय सेवन अनुकूल मिले हैं, ताकू तू अंधक वर्तकीय जानी, या ऐसे मिले हैं जैसे किसी के हाथ अंधे के हाथ में आ जाए बाय चांस, वैसे जैसे अंधा ताली देते बटेर को पकड़े, ताका बड़ा आश्चर्य है क्योंकि देख नहीं सकता वो क्या पकड़ेगा किसी को तो मान लेते उसने ऐसा कुछ हाथ आगे किया और वो बैठ गया या आ गया। तो ऐसे संसार विषय थोड़ा भी सुख होने का बड़ा आश्चर्य है, यानी ये सुख हो रहा है बहुत आश्चर्य है, क्योंकि अनंत जीव तो दुख में पीस रहे हैं, किसी को थोड़ा सुख मिलता है तो बहुत आश्चर्य की बात है। यहाँ सुख की अपेक्षा बता रहे, वैसे मनुष्य भाव की दुर्लभता तो ऐसे भी बता चुके थे पहले। क्या क्या
आखिरी शब्द, आखिरी शब्द श्लोक का ये
वर्तकीय कम बरोबर,
उसमें क नहीं है,
किसमें नहीं है ना, विंध्यन किय कम चाहिए उसमें गलत है क्योंकि मेरे वाले में है। हाँ किय कम चाहिए, यानी ये विषय सेवन के बारे में बात चल रही थी पहले। मनुष्य भाव की दुर्लभता वो तो अलग से बता दिए, यानी इस संसार में तो दुख ही दुख है, तो किसी को कहते हमको कहाँ दुख है, हम तो इतना है, तो बाय चांस मुझे मिला है तो ऐसा तो थोड़े काल के लिए है, ये आश्चर्य है। हम अभी 70 पृष्ठ पर आए, 70 आत्म असावधानी। इस अज्ञानी जीव पर अहर्निश यह भ्रम का ही अंधेरा छाया हुआ है, अहर्निश ने रात दिन यानी हमेशा ही, यह अपनी उन्नति रात दिन, दिन रात कहो रात दिन कहो, अह एने दिन निश एने रात, हाँ यानी सदा काल, यानी भ्रम का अंधेरा ही छाए वो तो अपना कल्याण भी नहीं उसको दिखता है। यह अपनी उन्नति के लिए कुछ नहीं कर पाता, कभी कुछ प्रेम भी करता है किसी बात से ऊब कर कल्याण करने के लिए, तो भी इसे वह विशुद्ध पद प्राप्त नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, यानी कोई बहुत प्रतिकूलता है या अन्य किसी ऐसी कोई घर में नहीं बनती मान लो, इसे किसी कारणवश ऊब कर इस मार्ग पर आता है, परंतु आत्म तत्व तो जाना नहीं है और बस कुछ व्रता दिया अंगीकार करके कुछ वेश धारण कर लिया, अपन उससे तो उसका कुछ कल्याण नहीं होता, ये कह रहे विशुद्ध पद प्राप्त नहीं कर सकता। जिस पद से यह आत्मीय साम्राज्य प्राप्त होता है उस पद को यह प्राप्त नहीं होता है, वो सम्यक दर्शन उसको नहीं हो सकता क्योंकि घर से छूटने के लिए कुछ अंगीकार कर लिया। ऐसे भी हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं किसी को घर में कुछ खाने की नौबत है तो उसने दीक्षा ली है, किसी को अन्य कुछ परेशानी थी। हम गए थे ना सोलापुर, उसने एक आदमी मिला था, लंबी चौड़ी लिस्ट पूरे किस मुनि ने क्या क्या किया, उसके क्या क्या चलता है सब, और वो जमाने में कभी अभी उसको भी 30 साल हो गए, सोलापुर में गए थे तब की बात है। अपन उसके पहले हम 84 में गए थे ना प्रवचन के लिए, तब की बात है। हाँ देखो, जिस पद से आत्मीय साम्राज्य प्राप्त होता है ना, ये विशुद्ध पद है और उस जीवों को ये प्राप्त नहीं होता है। हम पृष्ठ संख्या 70 पर है, 70। हाँ, वो हमने 3 लाइन पढ़ी है, उसका इन शॉर्ट हम बताते हैं कि अज्ञानी जीव जो है, तो अज्ञानी जीव रात दिन, हर निशाने रात दिन, दिन रात अपने उन्नति के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके भ्रम का अंधेरा छाया हुआ है। और कभी कभी क्या, परिस्थिति से ऊब कर कुछ करना चाहता है, यानी कुछ व्रतादि अंगीकार करता है, परंतु विशुद्ध पद नहीं प्राप्त होते, नहीं आत्मा का कल्याण वाला पद, यानी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। हे आत्मन, 4th लाइन, तुझे कौन तारेगा, कौन सुखी करेगा, तेरी खबर लेने वाला केवल तू ही है। यानी इसको लगता है कि कोई दूसरा मुझे सहारा है, किसी के कारण मैं तर जाऊंगा, तो ऐसा कोई है नहीं है। कहते तेरी खबर लेने वाला केवल तू ही है। ये कितनी बार है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कितनी बार आत्म साधना उसमें भी आए ना, समाधि में, हाँ, वो अनगर सागर धर्मामृत में भी ये बात आई थी। अपने आप के मन को संभाल, वचनों को संभाल, शरीर को संभाल। तेरी ही संभाल से तो तुझे आत्मीय आनंद प्राप्त होगा। व्यर्थ के मोह और राग द्वेष के जालों से तुझे लाभ कुछ न होगा। किसी क्षण सबसे निराले ज्ञानानंद घन निज अंतस्तत्व का अनुभव तो कर। क्या कहते हैं, देखो कितनी अलग अलग पद्धति से इसके कल्याण की बात बारंबार बारंबार बताते हैं। ज्ञानियों को तो रंचमात्र भी उसमें कंटाला नहीं आ रहा है, लगता है कि जैसे ज्ञानी स्वयं तो अज्ञान दशा में से अभी ज्ञानी हुए हैं, तो उनको पता है कि ये सामने वाला जीव क्यों दुखी है, इसलिए बारंबार उसको यही उपदेश दे रहे हैं कि किसी क्षण सबसे निराले ज्ञानानंदगन निज अंतस्तत्व का अनुभव तो कर। ए माँ अपने बेटों को, अरे चक्कर तो देख, चक्के तो देख, हाँ कितनी अच्छी बनी है चीज, बच्चा नहीं चाहता है, अरे खाके तो देख। तो यहाँ तो कहते अपने निज आनंद आनंद घन निज अंतस्तत्व का अनुभव तो कर।
अच्छा, उसके पहले जो उन्होंने बताया ना, अपने आप के मन को संभाल, वचनों को संभाल, शरीर को संभाल, माने तब क्या कहना चाहिए,
संभाल यानी
शरीर को संभाल।
देखो संभाल यानी मैं उसका कर सकता हूँ, ये मान्यता की बात नहीं है।
हाँ,
ये क्या कहना चाहते कि स्वच्छंद मत हो जा, थोड़ा विचार कर। शरीर को संभालने पंचेंद्रिय के विषयों में ये तो चला जा रहा है, शरीर ही मैं हूँ मान रहा है, शरीर के लिए वह सब कर रहा है, तो शरीर को संभाल, यानी हम कहते ना जरा कंट्रोल करो अपने, हाँ ऐसा ही सब। वचनों को संभाल का अर्थ होता है, जरा हम कहते ना, ये तो उपदेश की भाषा है, संभाल के बोलो, कठोर मत बोलो, इस तरह से। शरीर को संभाला नहीं, अभी शरीर के जैसे जिसको हम कहेंगे ना, उसी के पालन पोषण करने से, वो सजावट करना, श्रृंगार करना, उसमें लीन मत हो, रचा पचा मत हो, ये शरीर को संभाल। हमें तो मालूम है ना इनकी, वो बात अलग है, वो बात अलग है। हाँ,
ऐसा हमने छड़ाना में देखा है, नमो त्रियोग समारी के,
वही बात यहाँ है,
वो यही वही बात है,
मन वचन नमो त्रियोग समारी के, वो संभालना है, यानी इनसे हटकर अपने आत्मा में लगाना है, यही इनकी संभाल है। तेरी ही संभाल से तो तुझे आत्मीय आनंद प्राप्त होगा। उनको संभालना नहीं, उसको उसके केयर लेना, इसी नहीं उसका अर्थ है। संभाल लेने उसको, उसमें बह मत जा। व्यर्थ के मोह राग द्वेष के जालों से तुझे लाभ कुछ न होगा, ये इसका अर्थ है। मन के बारे में व्यर्थ मोह राग द्वेष, वचनों के बारे में, उसमें रचा पचा जो उसकी रुचि है वो छोड़ दे, ये कहते उसको संभाल। हम कहते ना बच्चा भी बाजार में ले जा रहे, बच्चा बच्चे को बराबर संभालना, संभालो यानी क्या करो, उसका ध्यान रखो। वो भाग नहीं जाए कहीं इधर उधर। तो ये भी ऐसे मन के अपना उपयोग मन में नहीं भटकना चाहिए। सारे सारे बाग जाल और सभी के सभी कल्पना जाल, ये सब क्षण मात्र में ही नष्ट होगी। जीव के बैरी, इस जीव के बैरी भाव छह है। प्रथम तो काम भाव है, किसी पर के शरीर के प्रति विकार युक्त कल्पनाएं जगाकर एक काम वासना का जाल गूंथना, यही जीव का एक प्रधान बैरी है। जैसे कोई कहार मछली को जाल में डालकर मछली पकड़कर बाहर फेंक देता है, सूखे स्थान में तो वह मछली तड़प तड़प कर संकलेश पूर्वक मरण कर जाती है, ऐसे यह काम विषयक विकल्प इस जीव को जैन शासन के समुद्रों से निकालकर बाहर तृष्णा के रेतीले स्थान में इस जीव को डाल देता है। मछली का जीवन पानी था, उस पानी से अलग होकर मछली अपने प्राणों को गंवा देती है, ऐसे ही यह संसारी अज्ञानी प्राणी जैन शासन ज्ञान से अलग होकर अपने ही मन और कल्पना के अनुकूल कुछ से कुछ कल्पना जाल बनाकर इस जैन शासन से अलग अलग होकर के तड़पता रहता है और दुखी होता रहता है। मोह, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन पांच बैरियों के वश होकर भी यह जीव संक्लिष्ट रहता है। सबका मूल जनक बैरी मोह है। वस्तु की स्वतंत्रता आन में न रहकर, आन नहीं रहता है, उसके भान नहीं, उसका ज्ञान नहीं है। वस्तु की स्वतंत्रता उसका आन होना नहीं, उसका ज्ञान होना, उसका भान होना, आन में न रहकर एक दूसरे का स्वामी मानना तो मोह है। इष्ट की अप्राप्ति व अनिष्ट की प्राप्ति में रोष परिणाम रहना क्रोध है। पर्याय में आत्मत्व के भाव होने के कारण इस कल्पित निज की अन्य जीवों से श्रेष्ठता चाहना मान है। क्या कहते हैं, देखो, पर्याय में आत्मत्व, ये मनुष्य मैं हूं, उसके कारण इस कल्पित निज, जो स्वयं निज है उसको निज नहीं माना, कल्पित निज, मैं बहुत पैसे वाला हूं, धन वाला हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, सबसे बहुत होशियार हूं, या सबसे मैं ऊंचा पद वाला हूं, अभी किसी में अपनत्व मान लिया उसने, ये कल्पित निज की अन्य जीवों से श्रेष्ठता चाहना वो मान है। बिल्कुल, पर्याय जितना मानकर ही ये कल्पित निज की, और वो चाह किसकी है कि मैं अन्य से बड़ा दिखाऊं। कल्पित इष्ट प्राप्ति के आशय से, देखो ये सारी कल्पनाएं हैं, क्योंकि इष्ट अनिष्ट क्या होता है, वस्तु में क्या इष्ट अनिष्टता है, ये इसकी कल्पना में इष्ट अनिष्टता है, इसलिए कहते कल्पित इष्ट प्राप्ति के आशय से, आशय से यानी अभिप्राय से, मन वचन और काय की कूट मायामयी प्रवृत्ति करना माया है। यानी उसने सोच लिया कि ये अच्छा है मेरे लिए, और ये मन वचन और काया से कुटिलता, यानी वो मायाचारी, मायामय प्रवृत्ति। कल्पित इष्ट की तृष्णा रखना लोभ है। क्या कल्पित इष्ट होता है? तो पैसा हमारे लिए बहुत इष्ट है, कल्पित है, हमने कल्पना कर ली कि उसके कारण हम सुखी हो जाएंगे। वो कल्पित इष्ट की तृष्णा रखना वो लोभ है। दुनिया में तो उसी को सबसे अच्छा समझा जाता है, जो ज्यादा तृष्णा रखेगा वो सब अच्छा बड़ा है ना। इन सब बैरियों के संकट शरीर के कारण है। इस शरीर से विविक्त अपनी प्रतीति करने से सर्व संकट समाप्त हो सकेंगे। विविक्ता ने विभक्त है, सभिन्न जुदा। पराधीनता में सुख का अभाव। देखो, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, परंतु इसने पराधीनता मानी है, कल्पना कर ली है, और उसके कारण वो दुखी है। भैया, यह प्राणी किस किस से आशा रख रहा है अपने हृदय में? बंधुजन और इष्टजन तथा स्त्री पुत्र आदि अनेक पदार्थों में आत्मीयता की कल्पना कर रहा है, यह मेरा है, पर इसका होता कोई नहीं है। हैरान होता है यह देखकर कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं, ऐसा पर पदार्थ में नहीं होता है। पराधीन विषयों से सुख कहां मिले? दुखी होकर के स्वच्छंदता से अपने विषय कषाय में प्रवृत्ति कर रहा है, यानी उसकी इच्छाएं उसका दुख है, और वो मान लेता है कि उससे मुझे सुख मिलेगा, इसलिए उसके विषय और कषाय में प्रवृत्ति होती है बारंबार। कदाचित सांसारिक सुख भी मिल रहे हैं, पर उन सांसारिक सुखों को यो जानो जैसे कि अंधे के हाथ में कोई उड़ता हुआ पक्षी आ जाए, है ना। बटेर, यह जीव अपने आप के संतोष और सुख के लिए क्या करता है, इसे अगले छंद में गुणभद्र आचार्य कह रहे हैं। 101 नंबर। हा कष्टमष्ट वनिता भीरकांड एव चंडो विखंडयति पंडितमानिनोपि पश्चाद्भुतम् तदपि धीरतया। एक धीरतया हुआ, धीरतया धी चाहिए, ध, धीरतया, धीरतया सहन्ते दग्धुम तपोग्नि भीरमुम न समुत सहन्ते। पढ़ेंगे अभी। हा कष्टमिष्ट वनिता भीरकांड एव चंडो विखंडयति पंडितमानिनोपि पश्चाद्भुतं तदपि धीरतया सहन्ते दग्धुं तपोग्निभिरमुं न समुत्सहन्ते। अर्थ देखते हैं। हाय, यहु बड़ा कष्ट है जो आपको पंडित ज्ञानी माने हैं, तिनको भी यहु प्रचंड काम है, सो बिना ही अवसर इष्ट स्त्रीनी का निमित्त करी खंडित करे है। ज्ञानीपना का खंड खंड करी महा दुख उपजावे है। बहुरी तो यह आश्चर्य देखी ती सपना खंड खंड होना को तो धीर वीर पना करी सहे है, और इस काम को तपरूपी अग्नि करी जलावने को नाही उत्साह करे है। अब ये शत्रु बताए ना, तो ये ज्ञानी के ऊपर भी घटाया उन्होंने भावार्थ। ज्ञानी ने ज्ञानी मानता है अपने को ऐसा, पंडित ज्ञानी की बात है। हाँ, भावार्थ, काम है सो देवतानी पर्यंत सर्व जीवनी को सतावे है। बहुरी जय, आपको ज्ञानी माने है, माने की बात चल रही ना। हाँ, तिनको भी स्त्रीनी का निमित्त भ्रष्ट करी दुख उपजावे है। सो देखो, जैसे कोई बुद्धिमान हुआ रहे है और आपको कोई बाणनी करी छेदे है, तहां साहस करी बाणनी की तो मार खाया करे, और बाण चलाने वाले को मित्र जानी वाकी नाश का उपाय न करे तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। मैंने बाण तो खा रहा है, उससे झेल रहा है, हाँ, वो चलाने वाले के मित्र के नाश का उपाय नहीं करता, वाकी पुष्टता ही किया चाहे तहां बड़ा ही आश्चर्य मानी है। तैसे कोई आपको ज्ञानी माने है और आपको काम है, सो स्त्री रूपी बाणनी करी पीड़े हैं, सो उनकी तो पीड़ा सहा करे, और काम को हित जानी तप रूपी अग्नि करी वाको भस्म करने का उपाय नहीं करे, यानी उसको नाश का उपाय नहीं करता है, अनेक सामग्री नहीं करी वाको पुष्टता ही किया चाहे है, सो यह बड़ा आश्चर्य है। अब हम प्रवचन पढ़ेंगे, 71 पृष्ठ है। आत्मरक्षा का अविवेक, यानी अपनी आत्मा का रक्षा नहीं करता है, उसमें अविवेक करता है। हाँ, बड़े कष्ट की बात है कि जो आपको पंडित ज्ञानी मानता है, ऐसे बड़े जनों को भी यह प्रचंड काम स्त्री के निमित्त वशीभूत कर देता है, ज्ञान का खंड खंड करके महान दुख उत्पन्न करा देता है। ये कषायों के परिणाम, ये काम वासना के परिणाम इस ज्ञान के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अज्ञान ही समाया रहता है, ज्ञान का वहां कोई काम ही नहीं है। यह आश्चर्य तो देखो कि खोटे परिणामों के कारण जो इस ज्ञान भावना का खंड खंड हो रहा है, उसे धीर वीर बनकर सह रहा है। विषय कषायों के कुतूहलों को कुतूहल चाहिए, उत्पन्न होने वाले क्लेशों को यह मनुष्य सहता हुआ अपने को बता रहा है। हो तो रहा है खंड खंड, हो तो रही है खुद की बर्बादी, और उसी बर्बादी में अपने को धीर वीर बना रहा है। अरे, इस काम विकार को तपरूप अग्नि में जलाने का उत्साह क्यों नहीं करता है? काम विजय के लिए तपश्चरणादि का आग्रह, इस देह को जितना ही आराम में रखो वो उतने ही अनर्थ व्यर्थ के विकारों को बढ़ाता रहता है। इस देह को तपस्या में जोग दिया जाए और नियत समय पर खाना, नियत खाना और भी जो अनेक तपश्चरण है, सर्दी गर्मी आदि के, उन सबको सह लेना, अपने आप के आत्मज्ञान को यह सावधान बनाए रहे तो इसे कहीं क्लेश न होगा। इन्हें केवल व्रतादि नहीं है, आत्मा में सावधानी पूर्वक ये की बात, उसकी बात कर रहे। हाय, देखो इष्ट जो स्त्री आदि है, उनका निमित्त यह काम इस जीव को खंडित कर रहा है और अपने आप को बर्बाद करता हुआ भी खेद नहीं मानता। इस काम ने तीन लोक के प्राणियों तक आतंक फैलाया है। स्वर्गों में देवता लोग नवग्रवेक से पहले 16 स्वर्गों पर्यंत वैकरिक शरीरधारी देवता भी इस काम से बच नहीं सके। कोई मनुष्यों की तरह काम सेवन करते हैं, कोई देवी देवियों के शरीर का स्पर्श करके संतोष मानते हैं, कोई देव शब्द ही सुनकर अपनी काम व्यथा दूर कर लेते हैं, कोई रूप देखकर, कोई मन से ही विचार करके इस काम की विपत्ति की चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा ने उसका इलाज करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं वे भी किसी भी रूप में पड़े। इस कामाग्नि ज्वाला में भी वे भस्म होते जा रहे हैं, ऐसा तो आतंक छाया है, किंतु यह जीव अपने को ज्ञानी मानता है। जो ज्ञानी लोक के द्वारा माने जा रहे हैं, उन्होंने इस काम विषय को छोड़ा है, यह काम विषय तो दुख ही उत्पन्न कराता है। महान अविवेक, देखो कोई अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता हो और कर क्या रहा हो, काम बाण से छिद्र रहा हो, दूसरे के काम बाणों को साहस करके सह रहा हो, और जो बाण चलाने वाला विकार है उसको मित्र मानकर उसके विनाश का उपाय नहीं कर रहा हो, ये विकार ही है उसका, वो बाण चलाने वाला है, वो उसका शत्रु है, उसको मित्र मान रहा है, बल्कि उसको पुष्ट कर रहा है, उसे और इनाम दे रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जो अपना घात करे उसको ही मित्र माने और उसका पोषण करे, यही हाल हो रहा है संसारी जीवों का। परिजन मित्रजन राग द्वेष मोह की ये सारी बातें इस जीव का विघात कर रही है, और यह जीव उन्हीं प्रसंगों को मित्रवत अपना रहा है, आशय में उन्हें मित्र मान रहा है, यानी किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, वो अपने विकारों की बात है, उसको वो अपना अच्छा मान रहा है, आशय में मित्र न माने और किसी कारण उन्हें पुष्ट करे तो वह बात अज्ञान से अलग है। नसीहत। एक कथानक है कि एक सेठ साहब की हजामत एक नाई बना रहा था। नाई ने हजामत बनाते हुए में एक दो जगह छुरा मार दिया, खून निकल आया। सेठ जी ने बाद में उसे 2 रुपए इनाम दिया। नाई बड़ा खुश हुआ, उसने सोचा कि यह तो बड़ी अच्छी तरकीब है, जितनी जगह छुरा मारो उतने रुपए इनाम के मिलते हैं। एक बाबू साहब की भी हजामत बनाने पहुंचा, सोचा ये बड़े पुरुष है, बड़े अच्छे ढंग से रहते हैं, इनसे तो ज्यादा इनाम मिलेगा। सो हजामत बनाते हुए उसने 2-3 जगह छुरा मार दिया तो बाबू साहब ने और उनके नौकरों ने जूतों से अच्छी मरम्मत कर दी। वह सोचता है कि मेरा हिसाब कहाँ बिगड़ गया, सेठ को 2 छुरे मार दिए तो 2 रुपए मिले, और ये तो बड़े पुरुष है, ये तो रुपयों के एवज में मार रहे हैं। वह एक बुद्धिमानी थी। उस सेठ ने नाई को मित्र मानकर रुपए नहीं दिए थे, किंतु सजा दिलाने के लिए रुपए दिए थे। भीतर से मित्र तो ना मानो, यह जीव तो इन्हें भीतर से मित्र मानता है, खूब विचार कीजिए। उपदेश। आत्मानुष्ठान में ही उद्धार। आत्मा में ही अनुष्ठान करना है। यह जीव कुछ दिनों को जीवित है, यह मरण करके कहां जाएगा? इसका फिर यहां के लोगों से कुछ परिचय भी रहेगा क्या? क्योंकि अभी पिछले भव में कौन क्या थे, हमारे क्या क्या कहां पता है, कौन माँ बाप थे, कौन क्या थे। अनेक भव व्यतीत हो गए, वहां के परिवारजनों का कुछ भी तो परिचय नहीं है, और जहां जाता है वहां इतना लगा हो जाता है कि उसके छूटने का मन नहीं करता। अरे यानी छूटने के कल्पना से भी पहले ही रोता रहता है। हाँ। अब क्या होगा मेरा, हम अकेले रह जाएगा, ऐसा हो जाता है ना। वहां के हाँ, यहाँ का कुछ भी परिचय न मिलेगा, तो ऐसे अभी से ही तू देख अपने आप को कि जो मिला हुआ भी है इससे भी मेरा कोई परिचय नहीं है। सबको अपरिचित देखो, स्नेह न बढ़ाओ, परिचय न बढ़ाओ, मोह मत बढ़ाओ, सबको न्यारा जानकर सबसे अलग हटकर अपने आप में अपने ज्ञान मात्र स्वरूप का अनुभव करो। अपने आप में पैठे बिना उद्धार का मार्ग न मिल सकेगा। पैठना यानी उसमें एकाग्र होना। बाह्य दृष्टि में तो केवल अशांति ही अशांति रहेगी। निज विश्राम के बिना विडंबनाओं का चक्र। नहीं, पैठा हिंदी है। वो पैठन गांव का नाम है। पैठन गांव है, वहां की वो पैठन ही आती है ना, और पैठन अपना एक क्षेत्र है ना, तीर्थ क्षेत्र है। बैठ हाँ वो तो कर लगाने की पद्धति है ना, गांव के नाम से आगे कर जोड़कर। हाँ देखो, निज विश्राम के बिना विडम्बनाओं का चक्र, विडम्बना होती ना जैसे हम कहते विटम्बना, विडम्बना होना, फजीत ही होना। कोई पुरुष अपने घर को न जानकर, अपने घर में प्रवेश न करके पराए घर में प्रवेश करे और वहां अधिकार जमाए तो उसका फल लूटना और पीटना ही उसे मिले है। अपना घर छोड़कर पराए पर कोई अधिकार जमाए तो वह केवल क्लेश का ही कारण है। हमारा वास्तविक घर है जहां ज्ञान और आनंद स्वरूप समाया हुआ है, ऐसा यही मेरा आत्म प्रदेश है, यही हमारा घर है। उस अपने घर को छोड़कर परवस्तुओं की आशा करना यही परघर में बास करना है, क्योंकि उसमें अपना प्रवेश है ही नहीं है, परंतु हमने उसकी आशा कर दी है, उसी का लक्ष्य कर दिया है। जैसे कोई बैरी बाणों से छेद रहा है और उसे भूल से मित्र मानकर उसका पोषण किया जाए तो जैसे लोक में वह मूढ़ कहलाता है, ऐसे कोई अपने को ज्ञानी रूप मानता है और ये काम विकार भाव स्त्री रूप बाणों से इसे छेदे अथवा पर शरीर बाणों से छेदे और उन्हें यह मित्र माने तो उसकी दशाएं उसी प्रकार है। जिसका ऊपर दृष्टांत दिया गया है वह पीड़ा सहता है और काम को हितरूप जानकर वही रमण करता है। अरे तू तपरूप अग्नि से इसी काम को भस्म कर देने का उपाय क्यों नहीं करता? क्यों अनेक सामग्री को संचित कर इस काम की पुष्टता को चाहता है? 73 पेज है। काम विजय से लोक विजय। एक बात बड़ी प्रसिद्ध है कि शंभु ने कामदेव को जलाकर उसकी राख को अपने शरीर में लपेटा और दुनिया में अपनी वीरता का परिचय कराया। एक स्तवन में कवि कहता है कि बाहरी विचित्रता, इस कामदेव को वास्तव में जलाया तो जितेंद्रिय ने, उससे कामदेव भस्म हो गया तो उसकी राख को लपेटकर कोई अपने को काम विजय ही प्रसिद्ध करना चाहता है। शरीर को सुकुमार मत बनाओ, शरीर के रुचियां और आरामदेह मत बनो, इस शरीर को कष्टमय होने दो, तुम उपकार और पर के काम करो। जो अपने शरीर को आराम से रखेगा, अपने शरीर से मोह करेगा, उसमें विकार भाव तीव्रता से आएंगे और अपने इन सब विकार परिणामों से अपने आप को संसार में रुलाएगा, जन्म और मरण की परंपरा बढ़ाएगा। तुझे यह विनश्वर शरीर मिला है, यह तो किसी दिन भस्म हो ही जाएगा। अरे भैया, ऐसा काम कर लो ना कि इस शरीर को तप और संयम में लगाकर तू विकार भावों को भस्म कर डाल और अपने शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप का निर्विकल्प होकर अनुभव कर। अनुभव करे करे लिखा है, कर। अपना काम और अपने परिणाम संभाल लेगा तो तुझे अलौकिक सुख प्राप्त होगा। यो आचार्य देव अपने आप के स्वरूप में मग्न होने का उपदेश कर रहे हैं। 102 नंबर को जरा जांच लेते हैं पहले। अर्थिभ्यस्तृण वद विचिंत्य चाहिए, विचित्य नहीं, विचिंत्य न रह गया, न तर्य विचिंत्य विषयान कश्चित श्री क्षियम ने श्रियम नीचे चबी लगाना और उसके नीचे वो राष्ट्र होता ना वैसा छ्र किच्छित श्रियम कश्चित श्रियम वो श्र का छ हो जाता है कच्छित दत्तवान पाशाम ने पापाम ताम अवितर्पिणो अवतर्पिणी है अवतर्पिणीम अवतर्पिणीम इकार करो अवतर्पिणो है ना सेकंड लाइन अवतर्पिणीम विगणयन विगणयन नादात परस्त्यक्तवान प्रागेवा कुशलम विमृश्य सुभगो सुभगो है सुभ सुभगाप्यन्यो न पर्यग्रहित एते ते विदितोत्तरोत्तर विदितोत्तरोत्तर डबलत लास्ट लाइन विदितोत्तरोत्तर वरा तरोत्तर वरा सर्वोत्तमः त्यागिनः शार्दूल विक्रीडित पढ़ेंगे अर्थिव्यस्तृणवत् विचिन्त्य विषयान् कश्चित् श्रियं दत्तवान् पापां ताम वितर्पिणै विगयतन् नादात् परस्त्यक्तवान् प्रागेवा कुशलं विमृश्य सुभगा प्यन्योन्न पर्यग्रही देते ते विदितोत्तरोत्तरवरा सर्वोत्तमास्त्यागिन पहले अर्थ देख लेते हैं उसका अर्थ कोई त्यागी तो विषयनिको तिणा समान तृण समान अकार्यकारी चिंतवन करी जे पुत्रादिक वा याचक लक्ष्मी के अर्थी तिनको लक्ष्मी देद भया ये समझ में आती है बात देखो विषयों को तृण समान जानकर और अकार्य है अकार्यकारी है तो क्या करता है लक्ष्मी जो धन स्वयं का था पहले वो पुत्रादिकों को देता है या याचना करने वालों को दे देता है बहुरी अन्य कोई त्यागी तिस लक्ष्मी को पाप रूप तृप्ति की करणहारी नाही ऐसी मानता संता काहू को न देत भया ऐसे आप छोड़ता भया यानी कोई अन्य त्यागी है किसी को दिया नहीं उसने स्वयं उसको छोड़ दिया बहुरी अन्य कोई त्यागी सौभाग्य दशा को प्राप्त भया सो तिस लक्ष्मी को पहले ही अकल्याणकारी विचारी करी न ग्रहण करता भया ऐसे एते तीनों सर्वोत्कृष्ट त्यागी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तुम जानो यानी एक से दूसरा दूसरे से तीसरा और उत्कृष्ट है तीसरे ने उसको ग्रहण ही नहीं किया उसके पहले उसको छोड़ दिया भावार्थ सर्व धनादि सामग्री का त्याग करई ते सर्वोत्कृष्ट त्यागी कही है तीन विषय जे पुत्रादिक को धनादिक दे त्याग करे है ते भी उत्कृष्ट त्यागी है शोभा का है हेलो शोभा हाँ हाँ देखो भावार्थ हम पढ़ रहे थे ना पुत्रादिक को धनादिक दे त्याग करे ते भी उत्कृष्ट त्यागी है जे आप काहू को देवे नाही ऐसे धनादिक को त्यागे ते जी उनते भी उत्कृष्ट त्यागी है जाते उनके तो किछु कषाय अंशते काहू को देने का परिणाम भया इन्हीं के ऐसी विरागता भई जो को ग्रहो इन्हीं का कुछ प्रयोजन नहीं, यानी मैं इसको दो के उसको दे उतना भी उनको विकल्प नहीं है। बहुरी जे पहले धनादि को ग्रह नहीं, कुमारादि अवस्था विषय ही त्याग करे तो उनते भी उत्कृष्ट त्यागी है। हाँ, पृष्ठ संख्या 70 पर है, हम 70 नहीं, ये मैं दूसरे पुस्तक में से पढ़ रही हूँ, 73 पर अभी हम चाहेंगे पढ़ने को, वहां से पढ़ेंगे। हाँ, हाँ वो दूसरे पुस्तक का भी हो, एक लाइन पढ़ रही है। हाँ, यानी वो तो धनादि ग्रहता ही नहीं, वो सबसे उत्कृष्ट त्यागी है, क्योंकि क्या हुआ, उन तो भोगी कर ही त्याग गया किसी ने, इन्हीं के तो ऐसी विराग था भाई जो पहले ही भोगने के परिणाम ही नहीं भये, ऐसे सर्व दत्ती के दातार अनुक्रमते उत्कृष्ट उत्कृष्ट जानने। दत्ती के दाता ने देने होगी दाता, यानी त्याग करके गए ना वो सब। अभी मैं 102 का अर्थ देख रहेंगे। उत्तरोत्तर त्याग, जिसके भेद विज्ञान निर्मल प्रकट हुआ है और इस भेद विज्ञान के बल से परद्रव्यों की उपेक्षा करके जिसे निज अंतस तत्व चाहिए, अंतस तत्व, अंतस तत्व, अंत चाहिए, अंतस न स है ना, उसके बदले अंत करो, नर्त, निज अंतस तत्व की चाह लगी है, वह पुरुष इन विषय कषायों में बंध कर नहीं रह सकता है। फल यह होता है कि सर्व पर पदार्थों का त्यागी हो जाया करता है। जो जन त्याग व्रत लेते हैं उनके तीन प्रकार हैं। कोई अपनी संपदा को तृणवत चाहिए, अर्थिभ्य तृणवत विचिंत्य है ना, विषयान कच्चित श्रियम दत्तवान, तृणवत विचार कर और साथ ही कुछ कषाय के अंश होने से याचक जनों को देकर, कुटुंबी और बहिन आदि जिसको जो कुछ देना हुआ देकर, फिर उन विषयों के त्यागी हो जाते हैं, लक्ष्मी का त्याग कर देते हैं। कोई जन इतने विरक्त होते हैं और कुछ ऐसे विरक्त होते हैं इस लक्ष्मी को पाप स्वरूप और तृप्ति की न करनहारी समझकर उसके विनियोग की भी कल्पना न करके यूं ही छोड़कर चल देते हैं। यह उनसे भी विशिष्ट कक्ष के त्यागी हैं। कोई पुरुष ऐसे होते हैं पहले से ही इस लक्ष्मी को कुशल रूप न जानकर पहले से ही त्याग देते हैं, भोगते भी नहीं है, यह उनसे भी उत्कृष्ट त्यागी है। आगे बढ़ते, उत्तरोत्तर विशिष्ट त्याग का एक उदाहरण। उदाहरण के लिए घटना लो, किसी नगर में मंदिर में तीन पुरुष मिलकर व्रत नियम स्वाध्याय किया करते थे, जिनमें एक बड़ी उम्र का था, दूसरा जवान था, तीसरा 18-20 वर्ष का बालक था। स्वाध्याय का उन तीनों के नियम था, धर्म की रुचि थी। एक दिन उन तीनों में यह बात तय हुई, अपने में से जो विरक्त हो जाए वह बाकी दो को भी संबोधे। तो शुद्ध पुरुष के मन में आया कि उम्र बहुत गुजर गई, जो कुछ मन में था वे कर्तव्य भी कर लिए, पर इस जगत में सारभूत बात कुछ भी नहीं मिली। इस जगत से जो विरक्त होना भी कल्याणकारी है, इस जगत से तो विरक्त होना भी कल्याणकारी है। उसे सब कुछ छोड़ने का मन में आया, तो उसने 2-3 माह में सारी संपदा का हिसाब किताब बनाकर जिसको जितना बंटवारे में मिला सब कुछ दे दिया, सब कुछ छोड़कर घर से चल दिया। रास्ते में उस जवान की दुकान पड़ती थी जो स्वाध्याय में उसका साथी था। उस जवान साथी से बोला कि भाई, हम तो विरक्त हो गए हैं और जा रहे हैं किसी धर्म साधना के स्थान पर। तो वह जवान बोला कि हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। दुकान से उठा और साथ चल दिया। तो वह वृद्ध पुरुष कहता है कि तुम ऐसे क्यों चले जा रहे हो, लड़के को बुलवाओ, दुकान संभलवा दो, दुकान की चाबी सौंप दो, तब चलो। तो जवान बोला कि जिस चीज को छोड़ना है उसे जब छोड़ ही दिया तो फिर उसकी क्या व्यवस्था बनानी। जो लेना चाहे, जो लूटना चाहे लूटे। जिस वस्तु का हमने ममत्व त्याग दिया, उस वस्तु के बारे में अब क्या कल्पनाएं जगाना। वह यूं ही खुली दुकान छोड़कर उस वृद्ध पुरुष के साथ चल पड़ा। अब इन दोनों ने रास्ते में किसी मैदान में उस बालक को खेलते हुए देखा। वे दोनों कहते कि हम दोनों विरक्त होकर जा रहे हैं। तो वह बालक बोला, हम भी साथ ही चलते हैं। गेंद बल्ला वहीं छोड़कर उन दोनों के साथ चल पड़ा। वे दोनों समझाते हैं, तुम्हारे विरक्त होने के दिन नहीं है, तुम्हारी सगाई हुई है, विवाह कर लो, कुछ सांसारिक आनंद लूटो, बाद में विरक्त होना। तो वह बालक कहता है, जिस चीज को हम आगे छोड़ेंगे उसको अभी क्यों ग्रहण करें? जिस कीचड़ को हमें आगे हाथ धोना पड़ेगा उसे हम पहले से ही न लगाएं, तो यह कितनी उत्तम बात होगी। वह बालक खेल छोड़कर उन दोनों के साथ चल पड़ा। अब जरा विचारो तो सही, उन तीनों में उत्तरोत्तर कौन भला था? उस वृद्ध से भला तो जवान निकला, जिसने कुछ व्यवस्था बनाने की भी नहीं सोची। जिसे त्याग दिया उसका अब क्या विकल्प करना, वह चल दिया। उससे भी उत्कृष्ट निकला वह किशोर बालक, जो यह सोचता है, जिस चीज को भोगकर छोड़ना ही है उसको पहले से ही क्या ग्रहण करना। ऐसा भी आता है ना, प्रथमान युग, किसी राजा ने अपने पुत्र को तिलक करना चाहा, वो दीक्षा लेना चाहता था, तो जो ऐसी बुरी चीज है मुझे, मेरे क्यों सुपुर्द कर रहे हो, मैं भी चला आपके साथ। हाँ, मैंने उसने राजपद भी अंगीकार नहीं किया। हाँ, ऐसे आते हैं। चलो रुकेंगे अभी यहाँ पर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देख हो।